ओम शांति। 24 दिसंबर 1979। समेटने की शक्ति बहुत आपके पास जमा करो, इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति में भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है, ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना। यह डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें क्या हो, जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। तो अव्यक्त मुरली, 24 दिसंबर 1979। कल भी हम पढ़ रहे थे इसके पहले का पाठ। क्या पढ़ा था कल? फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए, क्योंकि चार चीजें एक साथ होगी। कौन कौन सी? पहली प्रकृति के पांच तत्व, फिर पांच विकारों का अति विकराल रूप, तीसरा तमोगुणी आत्माओं का आक्रमण, उसमें भी एक तो भटकती हुई आत्माएं और दूसरा भक्त आत्माओं की पुकार, और चौथा संस्कार, और संस्कारों में भी चार बातें। कौन कौन सी? कर्म भोग, कर्म संबंध का बंधन, आलस्य और बेलापन और व्यर्थ। तो माया के पांच खिलाड़ी, प्रकृति के पांच खिलाड़ी और पुराने संस्कार और आत्माएं, इतनी चीजें हैं। आज पापा कह रहे हैं ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो, इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। कौन सा अभ्यास चाहिए? कॉर्पोरियल, एंजेलिक और इनकॉर्पोरियल। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे ही जैसे साकार में स्थित होना, देह में स्थित होना, शरीर में स्थित होना, बॉडी में स्थित होना सहज है, ऐसे ही ये साकारी स्थिति है, वैसे ही क्या आकारी मेरी स्थिति है, निराकारी स्थिति मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होगा ना? क्या हमने इन दोनों स्थितियों को अपना समझा है? किसको? आकारी को। जो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है वो मेरी स्थिति है, जो निराकारी स्थिति है वो मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना सहज हो जाएगा। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। तो बाबा कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हैं? ड्रेस चेंज करने की। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए। कितने समय से मीना सिस्टर? कितने समय से चाहिए? कितने समय से चाहिए मंजू बहन? यह अभ्यास कितने समय से चाहिए? कितने समय से चाहिए? तब ऐसे समय पर पास होंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली। ऐसे समय के लिए अगर रेडी होना या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। डेट कॉन्शियस होने के फायदे नागेश भाई? डेट कॉन्शियस होने के कोई भी फायदे नहीं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फायदे तो है ना। फिर फुल पास हो जाएंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएंगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। इसके लिए जहान के नूरों की आंख सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? समझा क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। पांच विकार, पांच तत्व, तमोगुणी आत्माओं का आक्रमण और पुराने संस्कार, उसमें कर्म भोग, उसमें कर्म संबंध का बंधन, व्यर्थ संकल्प और आलस और अलबेलापन, ये सारा एक साथ आक्रमण करेगा। इसलिए कौन सा अभ्यास करो? एक सेकंड में समेटने का अभ्यास। समेटना अर्थात समेटने की शक्ति को क्या कहते हैं? पैकअप। किसको समेटना है? पहला प्रश्न तो ये है। व्यर्थ को, संकल्पों को समेटना है। और किसको समेटना है? एकदम सूक्ष्म में आ गए, पहले स्थूल से चालू करो। पहले बाहर से समेटना चालू करेंगे और धीरे धीरे संकल्पों तक आएंगे। परिधि से चालू करेंगे और केंद्र तक आएंगे। तो समेटना किसको है? देह की प्रवृत्ति को। संबंधों में जो लगाव बना रखा है उसको समेटना है। और किसको समेटना है? सामान जो इकट्ठा करके रखा है उसको भी समेटना है। और किसको समेटना है? पैक खाने को, खाना पीने का क्या है? शौक, लालच, हबच, तड़का फड़का वाला, उसका क्या करना है? उसको भी समेटना है। और किसको समेटना है? संसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाओं को। और किसको समेटना है? कर्मेंद्रियों के रसों को। हाँ, कर्मेंद्रिय है बाहर की ओर उन्मुख है। कर्मेंद्रियों की दौड़ बाहर है, उनको लगता है कि बाहर मिलेगा रस, अंदर उसको रस नहीं लगता है। परंतु आंतरिक रस की शुरुआत ही तब होती है जब बाहर का रस छोड़ा जाए, जब ये पता जाए कि जो अंदर जो है वो अमृत है, अमृत की बूंदें यहां गिर रही है, बाहर जो है वो अमृत नहीं है, वो विष है। तो किसको समेटना है? स्थूल में कौन सी चीजों को समेटना है? बाहरी संबंध बोल दिया, संबंध बाहर की आकर्षण जितनी है उनको, साधनों को और सेवाओं को भी, ये भी एक है। सेवाओं में आकर्षण, सेवाओं में लगाव, सेवाओं का बंधन, विश्व कल्याण करने का मोह अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु उसको भी समेटना है। उसको भी समेटना है, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सेवा करना, ज्ञान सुनाना, ये अच्छी चीजें है सभी। परंतु एक सेकंड में उसको भी समेट सके आत्मा, उसका अभ्यास तो हमने किया है, व्यर्थ को समझने का, परंतु समर्थ जो है, समर्थ संकल्पों का भी जो विस्तार है, तुरंत उसको भी समेट सके। क्योंकि तीसरी आंख जब कही जाती है, तीसरी आंख के तीन अर्थ है। तीसरी आंख खुलना अर्थात कैसे खुलती है वो? सबसे पहले आंख खुलती है सुनने से। तीन आंख अर्थात तीन खुलना। तीसरी आंख खुलने का पहला द्वार है सुनना। सुना, ज्ञान सुना, चीजें सुनी, भगवान के महावाक्य सुने, उससे आंख खुलेगी। ये बहुत ऊपर ऊपर की पहली आंख यहां खुली। सुना, पहली आंख खुली। उसके बाद में दूसरी अवस्था है चिंतन, समझ। उसके ऊपर चिंतन किया, उससे दूसरी आंख खुलेगी। पहली आंख तो खुल गई सुनकर, फिर जो सुना अब उसके ऊपर चिंतन किया जा रहा है, उसके उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता है मेरे पास भाषा मुझे नहीं आती है, शब्द कम है। चिंतन के लिए भाषा और शब्द नीचे छूट जाते हैं। चिंतन वह अवस्था है चेतना की जहां पर वो भाषा के बंधन से भी बाहर निकल जाता है। भाषा भी एक बंधन है। भाषा, शब्द, शब्दों के उच्चारण, शब्दों में धारा प्रवाहता, फ्लुएंसी, डिक्शनरी, शब्दकोश, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, मीनिंग, वर्ड्स, वोकैबुलरी, डिक्शन, ये भी बंधन है चिंतन के लिए। चिंतन के लिए व्यक्ति भाषा के बंधन से भी बाहर निकलना होगा उसको, क्योंकि भाषा भी उसे रोक के रखती है। किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए, व्याकरण के क्या नियम हैं, व्याकरण, उच्चारण, फ्लुएंसी, शब्द, अर्थ, शब्दकोश, ये सब की सब के दायरे से बाहर व्यक्ति निकलता है चिंतन के आकाश में। तो जब चिंतन करने लगता है ज्ञान का, तब दूसरा नेत्र खुलता है और तीसरा नेत्र खुलता है योग से। केवल ज्ञान सुन सुन के खाली तीसरा नेत्र नहीं खुलने वाला है। केवल चिंतन कर करके भी तीसरा नेत्र नहीं खुल सकता है। कोई चिंतन बहुत करे ज्ञान का, परंतु वो चिंतन भी कभी कभी बाधा बन सकता है, क्योंकि योग अर्थात एक सेकंड में फुल स्टॉप। चिंतन का भी बहुत बड़ा विस्तार है। और तीसरी अवस्था है योग। योग में जो सुना, जो मनन किया, अब उसका जब अभ्यास आत्मा करेगी, तब वास्तविक तीसरा नेत्र खुलेगा। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में, पकड़ने वाले। तीन प्रकार की पकड़। पहले प्रकार के मनुष्य है वो संसार की वस्तुओं को पकड़ते हैं, धन को पकड़ते हैं, प्रतिष्ठा को पकड़ते हैं, सम्मान को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, डिग्रियों को पकड़ते हैं, संसार में जो भी है उन सारी डिग्रियों को पकड़ते हैं। डिग्रियां इतनी पकड़ते हैं, डिग्रियां बड़ी होती जाती है, व्यक्ति छोटा होते जाता है। और खत्म भी हो जाता है कभी कभी, डिग्रियां रह जाती है बस। उसको पकड़ना, एक पकड़ ये है। दूसरी पकड़ है व्यक्ति ज्ञान को पकड़ता है, शास्त्रों को पकड़ता है, किताबों को पकड़ता है, भक्ति को, भक्ति के ज्ञान को पकड़ता है, या भगवान का भी जो ज्ञान है उसको भी पकड़ता है। कुछ भी ज्ञान, ज्ञान की पकड़। परंतु जन्म छूटते ही वो पकड़ भी चली जाती है, सतयुग में ये ज्ञान भी नहीं रहेगा। तीसरी पकड़ जो है, और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति है, वो पकड़ते हैं होश को, वो पकड़ते हैं अवेयरनेस को, वो पकड़ते हैं माइंडफुलनेस को, वो पकड़ते हैं सोल कॉन्शियसनेस को। केवल यही बचता है और वही आगे वास्तविक रूप से जाएगा। जितना होश को जिसने पकड़ा है, होश, अवेयरनेस, जागरण, अवेकनिंग, ये वास्तविक पकड़ है। ज्ञान से भी ऊंची पकड़, योग की है। तो तीसरी आंख केवल सुनने से नहीं खुलेगी, केवल चिंतन से भी नहीं खुलेगी, दूसरी खुल सकती है, परंतु तीसरी के खुलने के लिए क्या चाहिए? योग का अभ्यास, अर्थात देह से स्वयं को अलग करना। बाबा ने कहा है, जैसे स्थूल देह की जो स्थिति है, साकारी कॉर्पोरियल पार्थिव, ये देह की जो स्थिति है वो कितनी सहज है, वैसे ही एक दूसरा आयाम भी है चेतना का, वो है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में बैठकर सारे विश्व का भ्रमण करना, जहां चाहो वहां हम जा सकते हैं, ऐसी सूक्ष्म शरीर में क्षमता है। और तीसरी आंख इस स्थूल देह की आंख नहीं है, तीसरी आंख उस सूक्ष्म शरीर की आंख है। वास्तविक तीसरी आंख पर बहुत सारी खोजें की है, तिब्बत के लामाओं ने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी है। तीसरी आंख कैसे खुलती है, तीसरी आंख से क्या क्या देखा जा सकता है, उन्होंने दूसरे अर्थों में बताया है। बहुत सारी चीजें कुंडलिनी शक्ति के जागरण के विषय में कही हुई है। जो सात चक्र है वो स्थूल देह के चक्र नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो जो सूक्ष्म देह है, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, उसमें वो सात चक्र बताए हुए हैं। इसलिए विज्ञान उसे देख नहीं पाएगा, इसलिए विज्ञान उसको समझ नहीं पाएगा। उसमें जो शक्तियां है, सुषुप्त शक्तियां, ऐसी शक्तियां कि वो शक्तियों का यदि जागरण हो जाए तो व्यक्ति वो चीजों को सुन सकता है जो इस देह से सुनी नहीं जा सकती, वो चीजों को देख सकता है जो इस देह से सूक्ष्म आंखों स्थूल आंखों से नहीं देखी जा सकती। उन चीजों को देखना, उन चीजों को सुनना, उन स्थानों पर पहुंचना जहां पर इन स्थूल शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता, ये सारे कार्य सूक्ष्म शरीर से होते हैं। वो होते तब है जब ये सातों ही चक्र मूलाधार से शुरुआत करके सहस्त्रार तक जो बातें बताई है, बाबा ने इन सब बातों की कहीं कोई चर्चा नहीं की है, परंतु भारत के इतिहास में, भारत के शास्त्रों में इन सभी चीजों का वर्णन है। वास्तव में ऐसे कोई चक्र है नहीं, परंतु चेतना के अलग अलग स्तर है। कहां वो चक्र नीचे मणिपुर, मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मणिपुर और मणिपुर से अनाहत और अनाहत से विशुद्ध और विशुद्ध से आज्ञा और आज्ञा से 1000 petaled, हजार सहस्त्र पंखुड़ियों वाला जो चक्र यहाँ सहस्त्रार कहा है, ये सारे जब खुलते हैं किसी के, तब व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, जिस किसी को जो संदेश देना है वो दे सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी देश में जा सकता है। वो कालातीत हो जाता है, समयातीत हो जाता है। बाबा कह रहे हैं, आकारी शरीर भी मेरा है, ऐसा अभ्यास करो। फरिश्ता स्वरूप जो है वो मेरा है, ये अभ्यास करो। इसके लिए बार बार अभ्यास करना है, बार बार, एक बार से नहीं होगा। आज सुबह फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया, हो गया, लंबा समय है। लंबा समय देह के भान से दूर रहना, लंबा समय संकल्पों में आनंद का अनुभव करना, देह में आनंद का। संसार के व्यक्ति जो है उनका रस देह में है, देह को देखने में रस है, देह को स्पर्श करने में रस है, देह में सुंदरता नजर आती है, देह ही सब कुछ है। सारा जीवन देह के इर्द गिर्द घूमता है, देह के संबंध, देह का देश, देह की भाषा, देह की संस्कृति, देह का लगाओ, देह की इच्छाएं, देह की वासनाएं, देह के धर्म, सब कुछ देह के आसपास घूम रहा है। बाबा इस देह से की जो भान है, अवेयरनेस है, उससे मुक्त करना चाहता है और एक दूसरे राज्य में, जो एक राज्य है सूक्ष्म शरीर का, उसमें जब आत्मा विराजमान होती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है संसार को देखने का। जो देह में रहकर आत्मा देखती है और सूक्ष्म शरीर में रहकर आत्मा देखती है, वो दृष्टि बेहद की है, ये बहुत ही छोटी है। इसमें स्वार्थ है, वो निस्वार्थ है, वो विहंगम दृष्टि है, बर्ड आई व्यू, ये बहुत ही ट्यूबुलर विजन है। केवल स्वार्थपूर्ण, छोटा सा। तो लंबा समय क्या कहा, आकारी शरीर भी मेरा है, यह अभ्यास। यह देह मेरा नहीं है, वो देह मेरा है। और तीसरा अभ्यास निराकारी स्थिति, वो भी मेरा है। और कितना देर में करना है, एक सेकंड में। ड्रेस चेंज करो, ये ड्रेस निकाला वो ड्रेस निकाला वो। पर उसके लिए एकदम फास्ट तभी हो सकता है जब धीरे धीरे का पहले अभ्यास हो। फास्ट व्यक्ति कब चला सकता है, गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है पर पूरा फुल कंट्रोल भी है, कब चलाएगा मनोज भाई? कार व्यक्ति बहुत फास्ट चलाता है पर फुल कंट्रोल है और कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, ऐसा कब होगा? उसकी बहुत एक्सपर्ट है वो, उसमें वो तब की स्टेज है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो। अगर कोई नौ सीखिया सोचे मैं बहुत फास्ट चलाता हूं और कोई एक्सीडेंट भी ना हो तो क्या होगा? और उसको कहा ही गया एक सेकंड में ये, एक सेकंड में वो, एक सेकंड में वो, और वो सीधा वही अभ्यास करता है, तो शायद नहीं होगा उसके लिए। बाबा ये जो बार बार कहते हैं लंबे समय का अभ्यास, केवल अमृत वेला अशरीरी हो गए काम पूरा हुआ नहीं, बार 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 दिन में देह को देह से अलग होना, ये अभ्यास समेट लो, फास्ट समेटने का अभ्यास। 10 साल की जो एलिस होती है वो जो है एक स्वप्नलोक में पहुंच जाती है, एक वंडरलैंड में, तो वहां पर देखती है मैड हैटर और मार्च हेयर, एक खरगोश और एक टोपी बेचने वाला मैड हैटर, उनकी पार्टी होती रहती है। तो वो जाती है वहां पर और वो लोग गा रहे हैं, वो जो बर्तन वहां रखे होते हैं टी के वो सब भी नाच रहे हैं। वो स्वर्ग लोक है, स्वप्न लोक है, उसमें कुछ भी होता है। तो वो वहां पहुंचती है और वो वहां पहुंचती है, उनके साथ बातें करती है, बहुत सारी बातें उनके बीच में होती है, चर्चा बातें अभी चालू ही है। वो उसको चाय देता है और वो कहती है कि सॉरी मुझे पता नहीं था मैंने आपको डिस्टर्ब किया आपकी बर्थडे पार्टी में। तो बोलता बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे पार्टी नहीं थी, ये अनबर्थडे पार्टी थी, और चाय वापस ले लेता है। पहले चाय देता है क्योंकि उसने गलती की, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी पार्टी को डिस्टर्ब किया, आपकी बर्थडे पार्टी चालू थी। वो कहते हमारी बर्थडे पार्टी थी नहीं, हमारी अनबर्थडे पार्टी थी। तो वो पूछती है फिर अनबर्थडे पार्टी क्या होती है? साल में एक दिन बर्थडे होता है, बाकी 364 दिन हम लोग अनबर्थडे पार्टी मनाते हैं। तो कहती आई एम सॉरी, तो वो चाय वापस ले लेता है, और चाय वापस लेता है, फिर यहां वहां की बातें चलती है, और फिर तुरंत अचानक से क्लीन अप मूव डाउन मूव डाउन, क्लीन अप मूव डाउन मूव डाउन, सब फटाफट समेटो और आगे बढ़ो। ऐसा एक दृश्य उसमें है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और अचानक वो कहता है कि चलो सब समेट के आगे बढ़ो। वो कहता है नहीं अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी, कुछ नहीं बस क्लीन अप क्लीन करो और मूव डाउन। अंग्रेजी में ये कहावत आ गई है कि जब भी कोई कहीं जा रहे है और हमारा तो हो गया खाना खा के और दूसरा अभी भी खाना खा रहा है, उसको पता कहते क्लीन अप मूव डाउन फटाफट खत्म करो और आगे बढ़ो। कुछ भी हो रहा है अचानक से स्टॉप करके आगे बढ़ना, ये अभ्यास है। फटाफट क्लीन करो और फटाफट आगे बढ़ो। अभी अभी समेटना, यहां पर जैसे समेटने की बात है, तुरंत समेट लेना, ऐसे नहीं कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसा नहीं कि उस ज्ञान सुनाने में ही बहुत अच्छा रस आ रहा है, थोड़ा और सुना तू। बाबा कैसे जाता है, आया बैठा मुरली सुनाई और उसको कोई लेना देना नहीं किसी से कोई लेना देना नहीं। खराब गंदी बुरी अनराइटियस रॉन्ग चीजों को हम तुरंत समेटते हैं, परंतु जो अच्छी ज्ञानयुक्त अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली जो चीजें हैं, उसको भी समेट लो तुरंत। इसके लिए कहते हैं अभी अभी ये तो कहा है बाबा ने कि साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी, निराकारी से आकारी में भी आते आना चाहिए जल्दी। अभी अभी योग में है, अभी अभी कर्म, अभी अभी कर्म में है और अभी अभी योग। योग में ज्यादा व्यक्ति चला जाए तो उसको ये सेवाएं वगैरह बहुत छोटी लगती है, उसको फिर उसमें आने की इच्छा नहीं होती। सोचो कोई एक हफ्ता तक मौन करे, मौन योग भट्टी करे 7 दिन, और दिन रात बाबा के प्यार में खोया हुआ है उसको तुरंत कहो फिर अब तुमको ये सेवा करनी है, वो उसमें उधर आना, ये जो ट्रांजिशन है ये मुश्किल है, वो भी मुश्किल ना हो, पर अभी अभी ये, अभी अभी ये, अभी अभी ये, अभी अभी ये, सब अभी 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 अभी। तो हम बात कर रहे थे 1 सेकंड में यहां से वहां और वहां से वहां और वहां से फिर नीचे, उधर से नीचे भी सेकंड में आना है, यहां से ऊपर तो सेकंड में जाना है परंतु नीचे भी सेकंड में आना, ये भी अभ्यास है। दोनों ही चीजों में, क्योंकि यहां गाड़ी फास्ट चल रही है परंतु ब्रेक भी बहुत फास्ट लगे, उसमें ब्रेक बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो ये एक अभ्यास बता, पहला बताया पैकअप, दूसरा बताया ड्रेस चेंज। पैकअप अर्थात समेट लेना खुद को, जो विस्तार कर रखा है आत्मा ने, विस्तार किया है बहुत सारा, कल्पनाओं का विस्तार है। हर व्यक्ति एक स्वप्न जगत में जीता है, अंदर ही अंदर उसका अपना एक स्वप्न है। 24 घंटे में वो कितना समय जागा हुआ है और कितना सोया हुआ है, वो नींद वाले स्वप्न की बात नहीं कर रहे हम, दिन में जब जागा रहता है स्थूल में तब भी स्वप्न में होता है। यहां से किचन तक जा रहा है तो पता नहीं कितने सारे स्वप्न अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अंदर ही अंदर स्वप्नों का निर्माण। तो पहला, अगर हमने बहुत विस्तार कर लिया है उस विस्तार को समेट लो, एक दूसरा अभ्यास यहां से वहां और वहां से वहां, वो जो निराकारी स्थिति है वो भी मेरी स्थिति है, तो उन दोनों स्थितियों में आकारी और निराकारी में लंबा समय रहने का अभ्यास। कितना समय हम बिता रहे हैं सूक्ष्म वतन में, कितना समय रहते हैं, बहुत कम। टोटल टाइम पीरियड कितना है हमारा सारा मिला के 24 घंटे में कितना तो बहुत कम हो गया। कितना टाइम हम सूक्ष्म वतन में बिता रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बिताना अर्थात सूक्ष्म वतन भी कोई ऐसा नहीं कि ये संसार यहां और वहां वो, देह के ऊपर जब हम हैं वो सारी अवस्थाएं सूक्ष्म वतन की समझ लो, कि जिसमें हम आकारी स्वरूप में हैं, फरिश्ते स्वरूप में हैं, लाइट के स्वरूप में हैं, देह की चेतन देह के भान से परे है, वो सभी फरिश्ता स्थिति है। एक व्यक्ति है जो गहन चिंतन में खोया हुआ है, वो भी एक रीति से देह के भान से परे है, वो सूक्ष्म अवस्था में ही है एक रीति से। ये दूसरा, तीसरा, फिर यहां जो तीसरी बात कही है वो कौन सी, डेट कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। तो डेट कॉन्शियसनेस के फायदे, फायदे काम जल्दी होगा और बिजी रहेंगे, दादी डेट देती थी, डेडलाइन सेट करना, टाइम मैनेजमेंट में प्रिंसिपल आता है, और लक्ष्य याद रहेगा, और बताते जाओ फिर इधर का महावाक्य पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और डेट कॉन्शियस होने से क्या क्या होगा, देह का समय का भान रहने से क्या क्या होता है, व्यर्थ को समझ लेंगे। एग्जाम की अगर डेट ले दी जाए, यदि यहाँ पर बताया जाए कि आपको यहाँ पर एक टॉपिक है जिस पर बोलना है 1 महीने के बाद, 1 महीना टाइम है अभी, और कहा जाए कि कल, तो आज दिन भर कैसा होगा तो मतलब फायदे बहुत है, और क्या क्या बताओ, हाँ तो उससे सेवा हो जाएगी, एक लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बाबा कह रहे हैं तो डेट बताएंगे तब तैयार होंगे, डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। परंतु एक प्रश्न ये है, जो डेट के अनुसार करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं, एग्जाम के लिए करते हैं, क्या वास्तव में यही लक्ष्य है बस, क्या यही लक्ष्य है बस एग्जाम के लिए पढ़ना, बस एग्जाम हो गई, जिस दिन क्लास कराना था क्लास करा दिया, हो गया अभी चलो आगे, एक गया ये रिलैक्स। जय कृष्णमूर्ति भारत में बहुत बड़े विचारक हुए हैं कभी, ही वॉज बहुत स्ट्रांगली अपोज था उनका ये बात के लिए कि बच्चे जो है ना केवल एग्जाम के लिए पढ़े। वो एग्जाम, वो जब छोटे बच्चे थे, छोटा लड़का था वो, स्कूल में जाते थे कुछ भी नहीं लिखते ही नहीं थे, कुछ फेल हो जाते थे कितनी बार, क्योंकि वो ये जो सारी सिस्टम बनी हुई है संसार की, बहुत सारी चीजों का विरोध था उनका, विचारधारा अलग थी कि पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं, खाली एग्जाम के लिए, एग्जाम में पास हो गए हो गया, आगे क्या, आगे क्या। नहीं पर ये एक शॉर्ट टर्म हो जाता है, एक क्लास है वो कराना है बस, सारी तैयारी उसके लिए पूरा 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 केंद्रित हो गए, क्लास जैसे पूरा हुआ काम पूरा हुआ, उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं। हमने वो भी अच्छा है आगे की तैयारी। तो हम बता रहे हैं कि खाली वो डेट, ये सारी फायदे तो बताए, परंतु हम ये समझे कि ये चीज मुझे खाली उस एग्जाम के लिए नहीं करनी है, ये चीजें खाली बोलने के लिए, वो तो निमित्त है, बीच में आ रहा है, फूल जो है ना वो खिला हुआ है, सुगंध जा रही है, उसका स्वभाव है सुगंध देना, हाँ कोई बीच में आ गया उसको वो सुगंध मिल जाए तो अच्छा है, बाकी वो तो सुगंध देना चालू ही है, वो थोड़ी ना इसलिए बैठा हुआ है कि ये आएगा तो मैं इसको सुगंध दूंगा, वो आएगा तो इसको कम दूंगा, उसको ज्यादा दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये सब कोई लेना देना नहीं है उसको, ये तो व्यक्ति मनुष्य सोच रहा है, उसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, आए तो मिल जाएगी, जिसको मिल सबको मिल जाएगी। तो क्लास इधर चालू रहे, और वो किसके लिए चालू रहे, किसके लिए, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाय, तुलसीदास लिखता है मैं ये रामचरितमानस लिख रहा हूं किसके लिए, स्व के सुख के लिए, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया जाने न जाने ये प्रकाशित हो ना हो, किताब मार्केट में आए और इसकी इतनी प्रतियां छपे उसके से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम हो इसके लिए है ही नहीं, इसके दोहे लोगों के मुख पर हो, वो तो तभी थे जब वो जीवंत थे तभी लोग दोहे गाते थे उनके, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था, नहीं तो अगर लेना देना होता तो वही बाधा हो जाती। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की ये जो गाथा मैं लिख रहा हूं स्वयं के लिए, ये जो मैं टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूं, ये जो मैं चिंतन कर रहा हूं, ये किसके लिए है, स्वयं की उन्नति के लिए। हाँ दूसरे को इसका फायदा हो जाए ये ठीक है, पर आज है कल नहीं भी होंगे वो, उससे कोई लेना देना नहीं। लास्ट है, जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंख क्या हो, सदा खुली हो, जहान के नूरों की आंख सदा खुली हो, तो जहान के जो नूर है आंख जो है वो खुली हो। आंखों की देखभाल कैसे करें प्रश्न है, क्या क्या करें आंखों की देखभाल के लिए, आंखों की देखभाल कैसे करते हैं संसार में, सबसे पहले तो एलर्जन, जिस चीज की एलर्जी है उससे उसको बचाना होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन ना लग जाए इसका ध्यान रखना होता है, सनग्लासेस का प्रयोग करना होता है, गॉगल्स का प्रयोग करना होता है, आंखों की स्वच्छता होनी चाहिए, बार बार हाथ धोना, और वो गंदे हाथों से आंखों का हाथ न लगाना, उसको न मलना, बीच में आई ड्रॉप्स डालना। और मीना सिस्टर कंजंक्टिवाइटिस की क्या क्या ट्रीटमेंट है ना, आंख बंद रखना, कहां और ऐसी जगह पर नहीं जाना कि जहां पर धूल मिट्टी डस्टिंग और ये सारी चीजें हो, और कहीं लंबा समय तक कुछ देखते नहीं रहना, कंप्यूटर टीवी लैपटॉप वेल्डिंग, नहीं तो आंखों पर असर होता है, और बार बार आंख धुलाई करना, और क्या करना, हरा भरा देखना, और स्थूल 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 आंखों की देखभाल कैसे की जाती है, हाउ टू टेक केयर ऑफ आईज, आंखों को आराम देना, नींद अच्छी होनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, भोजन हेल्दी खाना चाहिए, आंखों की एक्सरसाइज कौन सी? हरी सब्जी। हाँ वो सब भोजन में आ गया, हेल्दी डाइट। और अच्छा अच्छा देखना चाहिए। और नहीं नहीं वो नहीं चल रहा है, स्थूल स्थूल आंखें, स्थूल आंखों को कैसी देखभाल करें? थर्टी इंचेस का गैप चाहिए, 30 इंच टीवी और हमारे बीच में, और कंटिन्यूअस लैपटॉप कंप्यूटर टीवी कुछ भी हो 20 मिनट्स का बीच में गैप चाहिए, 30 इंचेस का डिस्टेंस हमारे और उसके बीच में, टीवी के बीच में। और देखते हैं तो ऐसे एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, ये और ये ऐसे और ऐसे करके बीच में बैठने, इसको कहते हैं पामिंग, ये और ये इधर रखना, ये इधर रखना और ऐसे करके नीचे करके बैठ जाना, इसको आईज का, आईज को रेस्ट देना कहा जाता है। अभी ये आंख को कैसे खुली रखेंगे? सबसे पहले तो जिन जिन चीजों को इन्फेक्शन हो सकता है उससे दूर रहना, जो जो चीज से एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी, परचिंतन की धूल, परदर्शन की मिट्टी, उनसे उसको बचा के रखना। आई ग्लासेस, स्पिरिचुअल सन ग्लासेस, स्पिरिचुअल गॉगल्स पहन के रखना, आत्मिक दृष्टि का गॉगल, एवर रेडी का आई ड्रॉप, कभी कभी हेलमेट भी पहनते हैं आंखों को बचाने के लिए, ज्यादा जहां ये होता है, स्पिरिचुअल हेलमेट, स्पिरिचुअल गॉगल, स्पिरिचुअल सनग्लासेस, स्पिरिचुअल आई ड्रॉप, प्रिवेंट फ्रॉम एलर्जीज, माया की एलर्जी, माया की धूल, आंखों की संभाल के लिए ये जो पॉइंट्स बताई उस सबको स्पिरिचुअल कर दो। हाँ आंखों बार 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 चेक कराना और रेस्ट उसको अच्छे से देना। और जो स्थूल के लिए वो सूक्ष्म के लिए भी है, टीवी मोबाइल इंटरनेट लैपटॉप स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कितना है उसमें भी समय, टाइम वेस्टर्स में आता है वो सारा। तो ये सारी बातें हैं, तो जहान के नूर हम है, हमारी आंख खुली चाहिए। ओम शांति।